नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। मेरी वाणी प्रभुपाद की कृष्ण की वाणी है, ये दोनों के बिना और हम इस्कॉन के भक्त कोई भी भक्त कुछ नहीं बोल सकते। उसको बोलते हैं नो गैम्बलिंग, स्पेक्युलेशन नहीं, तर्क नहीं, तर्क वितर्क नहीं, यथारूप। तो आइए सब यथारूप, इस्कॉन में सब यथावत, तर्क नहीं, स्पेक्युलेशन नहीं। उसको एक चार नियम में से एक नियम है नो गैम्बलिंग का अर्थ है कि स्पेक्युलेशन नहीं, का अर्थ है कि भगवान की वाणी और प्रभुपाद की वाणी, बस कृष्ण की वाणी और प्रभुपाद की वाणी, उसके बिना और कुछ हम नहीं बोल सकते और आपको भी बोलना नहीं चाहिए। अगर आपकी जड़प से प्रगति आध्यात्मिक जीवन में बहुत गतिशील प्रगति चाहते हो तो इन दोनों के बिना और कुछ बोलना नहीं चाहिए न सुनना चाहिए, पीरियड। पीरियड का अर्थ है फुल स्टॉप, का अर्थ है पूर्ण विराम, स्टॉप। वहाँ यहाँ बक स्टॉप्स हियर, इंग्लिश में बोलते हैं कि बक स्टॉप एट कृष्णा एंड प्रभुपाद, का अर्थ है कि सारा समाधान यहाँ रुक जाता है। वो क्या कहते हैं दोनों, गुरु और कृष्ण, प्रभुपाद और कृष्ण। आइए, बहुत कुछ कहना है लेकिन आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत कुछ कवर भी करना है। तो कल हमने शास्त्र, साधु और गुरु का प्रमाण लेके भगवान कौन है, ईश्वर परेश कौन है, परमात्मा कौन है, उनको डिफाइन परिभाषा करने का प्रयत्न किया। ये तीनों सबसे बड़े प्रमाण हैं, शास्त्र, साधु और गुरु। ये तीनों का यस व्हाट, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, का अर्थ है ध्रुव सत्य। ये तीन, शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीन तीनों का टिक मार्क होना चाहिए। एक का नहीं होगा तो नहीं चलेगा, एक साधु का भी नहीं होगा नहीं चलेगा, एक गुरु का भी नहीं होगा नहीं चलेगा। जगत में जितने भी गुरु हैं, चाहे वो दुर्गा, सत्या, सावित्री, गायत्री के गुरु हो, शंकर भगवान के गुरु हो, शंकर भगवान की ओर ले जाने वाले गुरु हो, या विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण, या तो दूसरे, ये तीनों के बिना दूसरे जो गुरु हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है, उनको तो गुरु कह ही नहीं सकते। इसमें निराकारवादी भी आ गए और शून्यवादी, शून्यवादी गुरु नहीं हो सकते, भगवान को जो शून्य मानते हैं। तो सब गुरुओं का वोट चाहिए, सब साधुओं का वोट चाहिए और सब शास्त्रों का वोट चाहिए, तो वो भगवान बनते हैं। तो भगवान की परिभाषा है जन्म आदि यस्य अतः, जन्म आदि, जन्म जिसमें से सब कुछ आता है, उद्गम स्थान जिसमें से सब कुछ उद्गम होता है, जो सबका स्रोत है, मूल है, कारण है। तो एक जन्म आदि का अर्थ है स्थिति, सृष्टि का पालन, स्थिति। तो पालन भी वो करता है और पैदा भी वो करता है, इतना ही नहीं लेकिन अंत में सब कुछ अपने में समा लेता है, उसको बोलते हैं विसर्जन। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये तीनों जो करते हैं उनको बोलते हैं भगवान। तो अम्बा भी करती हैं, दुर्गा, लेकिन माँ भी करती हैं, बच्चे को जन्म देती है जाया, लेकिन पिता कोई और होता है। दुर्गा ये सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। लेकिन क्या करते है? इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टतेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा श्री कृष्ण की चेष्टा से वो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, वो सेकेंडरी मतलब कि दूसरे पहले सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, बाद में वो सेकेंडरी क्रिएटर है। ब्रह्मा भी सृष्टि करते हैं, आपको पढ़ाया गया हिंदुइज्म में कि ब्रह्मा से सृष्टि होती है, विष्णु पालनहार और शिव संहार करते हैं, लेकिन ये तीनों सेकेंडरी है, सेकेंडरी क्रिएटर। ब्रह्मा सेकेंडरी, सेकेंडरी क्रिएटर का अर्थ है कि बीज प्रद पिता, पिता जब बीज प्रद करता है तो माता जननी जन्म देती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल जो मूल मूलभूत एक जो भगवान है, ईश्वर है, वो है कृष्ण। ऐसा ब्रह्मा भी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कृष्ण है, परमेश्वर कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण परमेश्वर कृष्ण है, और वो सर्व कारणों का कारण है। न तत्स्य कार्यम कारणम च विद्यते न सम अधि गच्छते, उसके ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं। तो यह है कृष्ण, ब्रह्मा कह रहे हैं, और शंकर भगवान भी यही कहते हैं। ब्रह्मा शंकर भगवान के लिए कहते हैं कि गोविंद ये शंकर का मूल कारण है। यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्थि हेतु यम शंभु शंभु इस शंकर यम शंभुताम तथा सम उपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। शंभु शंकर भगवान ये दही है, लेकिन दही दूध में से रूपांतरित होता है, रूपांतरित वो दूध है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि गोविंद। यथा दधि विकार विशेष योगात संजाय, विकार होता है दूध का, जब विकार होता है दही बनता है, इसी तरह एनाइलेशन सृष्टि का विसर्जन के लिए शंकर भगवान श्री कृष्ण शंकर बनते हैं, विकार होता है शंकर बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर वो करने बैठे तो वो भगवान नहीं कहलाएंगे, वो अपने विस्तार से सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा शंकर अम्बा दुर्गा सत्या सावित्री 33 करोड़ उनके प्रतिनिधि हैं, देवताएं, देवताएं 33 करोड़ हैं। तो ये सब 33 करोड़ देवताएं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, देवी देवताएं। विष्णु भक्त भवे देव, विष्णु के जो भक्त हैं उनको कहते हैं देव। अगर वो देव विष्णु का कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो राक्षस है, वह आसुर यस्य विपर्जय। विष्णु भक्त भवे देव आसुर असुर राक्षस विपर्जय उल्टे, अगर वो अभक्त है तो वो राक्षस है। तो 33 करोड़ देवी देवताएं भगवान द गॉड नहीं है, परम ईश्वर नहीं है, ईश्वर जरूर है लेकिन परम ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। देवी देवताएं को ईश्वर कह सकते हो, हम भी ईश्वर हैं, ईश्वर ओ हम इसलिए तो इधर आए, ईश्वर ओ हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, सिद्ध मैं सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं, ये मेंटालिटी, ये हमारा स्वभाव, उसके लिए हम ये भौतिक जगत में फेंके गए, ये मेंटालिटी ईश्वर। तो ईश्वर एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। एकलो ईश्वर कृष्ण ही है और सब देवी देवताएं और कृष्ण के अवतार, कृष्ण के कई अवतार हैं। हिंदुइज्म में पढ़ाया गया कि 10 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, गलत। मुख्य अवतार आप ये जानते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत अवतार हैं। सरसी मतलब झील में, तालाब में, सर में, सरसी जितनी रिपल, जितने वेव्स आते हैं, मोजा जो वेव्स आते हैं, लहरें आती हैं, इतने श्री कृष्ण के अवतार हैं। और कितनी लहरें आती हैं? अनगिनत। तो भगवान के अवतार अनगिनत हैं। तो ये सब अवतार भी, ये कृष्ण इनका स्रोत है। आध्यात्मिक जगत में भी हर वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोक कई हैं प्लैनेट्स, और हर वैकुंठ लोक में एक अवतार रहता है मुख्यतः। और कितने वैकुंठ लोक हैं? अनगिनत। ये सब अवतार दिखाए, मत्स्या अवतार, कच्चा अवतार, बुद्धा अवतार, कल्की अवतार आखिरी में, और वामन अवतार, और नरसिंह अवतार, वराह अवतार वगैरह वगैरह। तो इतने ही अवतार नहीं है, अनगिनत अवतार। ये सब अवतार श्री कृष्ण में से आते हैं। भागवत का 3रा अध्याय पहले स्कंद का, इसमें लिखा एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अवतार हमने, व्यास मुनि कहते हैं कि ये सब अवतार जो मैंने गिनाए, ये सब अवतार श्री कृष्ण के कला है, और कला की कला है, पोर्शन पार्ट के पार्ट, कला के कला की कला। जैसे चंद्र की कला होती है, 14 दिन में अलग अलग प्रमाण चंद्र का दिखाई देता है, कलाएं हैं। उसी तरह श्री कृष्ण की कलाएं, ये सब अवतार है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कृष्णा अवतार नहीं है, कृष्णा अवतार ही है। कृष्णा सब अवतारों का स्रोत है, मूल है, कारण। कृष्ण के बराबर कोई नहीं, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं। असम ऊर्ध्व, वेदवाक्य असम ऊर्ध्व, उनके ऊर्ध्व ऊपर कोई नहीं, असम उनके बराबर कोई नहीं। आप शास्त्र की दृष्टि से देखोगे तो शास्त्रों में हर जगह खुले आम लिखा। भगवत गीता में तो हर चैप्टर में भगवान कहते हैं मत परतरम न अन्यत। इससे स्पष्ट और आपको कहाँ प्रमाण मिलेगा? भगवान खुद कहते हैं मेरे से ऊपर कोई नहीं। मत परतरम न अन्यत, न अन्य। तो भागवत में भी शुरुआत में ये भगवान श्री कृष्ण को भगवान एस्टाब्लिश किया गया, स्थापित कि भगवान है, वो कृष्ण है। और पहले दूसरे अध्याय में कहते वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परम योगा, वासुदेव पराक्रिया। भागवत में 1.2.28 वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव पराम गति। और गीता में कह दिया कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव श्री कृष्ण को सब कुछ समझता है, सबका स्रोत समझता है, ये महात्मा दुर्लभ होते हैं। अगर आप समझोगे कि वासुदेव श्री कृष्ण ही भगवान है, उनके ऊपर कोई नहीं, बराबर कोई नहीं, वासुदेव सर्वम। ध्यान दो, वैष्णव ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अच्छा बुरा जांच करने की शक्ति, जो डिस्क्रिमिनेशन, क्या डिस्क्रिमिनेशन? कि कृष्णा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इज एवरीथिंग, सब कुछ भगवान कृष्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ भगवान बन गए। गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। सब कुछ वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा, ऐसा जो समझ लेते हैं ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। सब खिचड़ो करेंगे, एक क्षणिक सुख के लिए अनेक देवी देवताओं की उपासना कर लेंगे, और भौतिक आध्यात्मिक नहीं, क्षणिक भौतिक चीजों के लिए कई देव देवताओं की उपासना करें। इसलिए आप लोगों के घर में मंदिर में देखोगे तो एक मूर्ति नहीं, एक चित्र नहीं, दो चित्र नहीं, कतार लगी होगी। सब कतार, सारी 33 करोड़ देवताओं की कतार श्री कृष्ण में है। कृष्ण का पिक्चर सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं हम कुछ बाकात रखें, कुछ हम छोड़ देंगे, लेकिन आपके 100 पिक्चर में 33 करोड़ छोड़ दिए आपने, लेकिन कृष्ण राम नारायण विष्णु एक ही चीज है। ये सब विष्णु, विष्णु तत्व, ये भगवान है, द गॉड, विष्णु तत्व कृष्ण, विष्णु के भी स्रोत कृष्ण है। हमारे हिंदुइज्म में ये सिखाया जाता है कि कृष्ण विष्णु का अवतार है। नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा, कोई कोई जगह लिखा हो बताओ। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कृष्ण विष्णु एक कृष्ण के, विष्णु एक कृष्ण के अवतार है, वो मैं भागवत में आपको खुलेआम दिखा सकता हूं। पहले ही भागवत ने पहले ही एस्टैब्लिश किया, कहा गया 2 अध्याय में, पहले 3 श्लोक 2 अध्याय में, विष्णु एक कृष्ण, कृष्ण में से विष्णु कैसे आविर्भूत होते हैं, क्यों होते हैं। कर्णोदक्षय विष्णु, ये कर्णोदक्षय विष्णु है, कृष्ण है ना स्रोत है इसका। कर्णोदक्षय विष्णु जिनके शरीर में से सारे अनगिनत भौतिक ब्रह्मांड उत्पत्ति होती है, और ये ब्रह्मांड में फिर से विष्णु, ये कर्णोदक्षय विष्णु का विस्तार, जिसको गर्भोदक्षय विष्णु कहते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु। तो ये गर्भोदक्षय विष्णु एक ब्रह्मांड के ये आत्मा है, और कर्णोदक्षय विष्णु सब ब्रह्मांड के आत्मा है, और क्षीरोदक्षय विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु गर्भोदक्ष समुद्र में, और कर्णोदक्षय विष्णु कर्णोदक्ष समुद्र में रहते हैं। क्यों ये समुद्र में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। भगवान श्री कृष्ण का ये पुरुष अवतार है, पुरुष होते हैं ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में ये गर्भोदक्षय विष्णु गर्भोदक्ष समुद्र में, और उनकी नाभि कमल में से ये कमल निकलता है, ये ब्रह्मा, ये नाभि, ये कमल है, ये टॉप मोस्ट स्वर्ग है, सबसे ऊंचा स्वर्ग ये है, और उसके नीचे तप लोक, उसके नीचे जन लोक, ये सब लोक है, ये सारे ऊपर वाले लोगों को हम कहते हैं स्वर्ग लोक। तो पृथ्वी से ऊपर तुरंत राक्षसों का लोग है, जिसको स्वलोक बोलते हैं, राक्षस लोग ऊपर रहते हैं, और राक्षसों के ऊपर ये स्वर्ग लोग जो हम जाना चाहते हैं, इंद्र का लोक, ये स्वर्ग लोक है, उनके ऊपर इंद्र लोक, और भूलोक, भूवर लोक, जन लोक, तप लोक एंड सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा, और ये सूर्य चंद्र है, और ये सूर्य चंद्र, और ये ऊपर पृथ्वी से ऊपर ये दोनों हैं, इसलिए पाताल लोग, ये नीचे पाताल लोग हैं, वहाँ उनका प्रकाश नहीं जाता, इसलिए अंधकार वाले लोग हैं। तो ये अतल वितल सुतल रसातल पाताल, और पाताल के नज़दीक बाजू में पितृलोक, जहाँ लोग जाना चाहते हैं, पितृव्रता, पितृलोक और नरक लोग, इनके पाताल के नज़दीक ये नरक लोग हैं। तो ये सब सृष्टि आती है कहाँ से, हर ब्रह्मांड में है, गर्भोदक्षय विष्णु हर ब्रह्मा में, ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, तो जितने ब्रह्मांड इतने ब्रह्मा विष्णु महेश, और कितने ब्रह्मांड अनगिनत, जो कारणोदक्षय विष्णु है वो जितने ब्रह्मांड पैदा करते हैं, इतने ब्रह्मांड में इतने ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको बोलते हैं गुणा अवतार, इनका स्रोत है कृष्ण, ये तीनों को बोलते हैं गुणा अवतार, और इनका स्रोत भी कृष्ण है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की परिभाषा, जिनमें से सब कुछ आता है, जिनमें सब कुछ समाता है, जिनकी स्थिति पालन करते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुधा बुद्धिमान जो होगा वो यह समझेगा, क्या समझेगा, कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से ही ये सब सृष्टि होती है, मेरे से, कृष्ण से। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, तो और मेरे से ही ये सब का पालन पोषण होता है, ऐसा सो समझेगा वो है बुद्धिमान। तो ये कृष्ण की परिभाषा कि भगवान द गॉड कौन है। भगवान का एजुकेशन आपको स्कूल में जाना होगा, इस्कॉन स्कूल में, तभी आपका काम होगा एजुकेशन, नहीं तो फिर पंडित जी ने कहा, पंडित जी खुद नहीं जानते हैं और हमने सुना, और अंधा गथा अंधगीय उपमाना, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे और नरक में ठेलम ठेला, लालची चेला लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। पंडित जी ऐसा नहीं, ज्ञान लो, ये सब हम आपको यहाँ ज्ञान देते हैं शास्त्रों में से, ऐसा नहीं कि मनमानी, ठेलम ठेला नहीं चाहिए। हम कई घंटा कथा कर सकते हैं क्योंकि ये नग्न सत्य, ये ध्रुव सत्य है, शास्त्र युक्त है, इसीलिए। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आज आगे बढ़ते पहले अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है ये टॉपिक ले लेते हैं। वैसे तो मैंने ले ही लिया है लेकिन मैं कहना भूल गया, जो कर्म की थियोरी मैंने कही थी, कर्म तो जैसा कर्म करोगे उसके मुताबिक आपको सब कुछ मिलता है। तो पिछले गत जन्मों में आपने क्या कर्म किया वो अभी आपको, आप चाहे ये जन्म में अच्छे हो लेकिन गत जन्मों में आपने बहुत गंदा काम किया तो उसका फल अभी मिल रहा है। और वैसे सोचा जाए तो ये भौतिक संसार में सब कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, हम बुरे हैं इसलिए तो यहाँ आए। अच्छे जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में, भगवान श्री कृष्ण के लोक में, गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक शिवलोक कैलाश ब्रह्म ज्योति विरजा की उस ओर, विरजा जो करुणोदक्षय विष्णु अभी हमने बात की थी, कारण समुद्र की उस पार सब अच्छे लोग हैं, यहाँ सब गंदे, सब गंदे। कोई भी किसी को भी आप साधु नहीं कह सकते, हैं साधु लेकिन गिन, आप गिन सकते हो भारत में कि साधुओं को आप गिन सकते हो कि कितने साधु हैं, कितने अच्छे लोग हैं, ये गिन सकते हो। तो दूसरे देशों की तो बात ही क्या करनी, दूसरे देशों में तो गंदगी का कोई अंत नहीं है। पहले तो शराब और मीट, बाद में इलिसिट सेक्स गलियों में, बाद में आगे शराब, तो सब इलिसिट सेक्स गैम्बलिंग मीट ईटिंग एंड इंटॉक्सिकेशन खुलेआम। तो वहाँ तो ये शुरुआत वहाँ से होती है, बाद में सबको काटना और ये तो चलता ही चलता है। भारत में कुछ सैनिटी है, सैनिटी का अर्थ है कुछ पवित्रता है अभी भी, लेकिन वो भी आप गिन सकते हो, करोड़ों में एक मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् अतिथि सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कश्चिन् करोड़ों में कश्चिन् आपको मिलेगा कि ये सज्जन है, ये साधु है। साधुओं में भी आपको कोई साधु मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सब साधु साधु है, ऐसा भी नहीं है। कलयुग में राक्षस लोग, कहा है भागवत में, राक्षस लोग कपटी लोग साधु बन के आएंगे और प्रचार करना जैसे वैसे प्रचार कर दे उल्टा सिल्टा, भागवत के 12 स्कंद में लिखा है। तो अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है, पहले तो अच्छा कौन है, यहाँ इच्छा द्वेष, कृष्ण का इच्छा द्वेष किया और कृष्ण की कंपटीशन, गॉड्स कॉम्पिटेटर एंड गॉड बनना, गॉड एंड गॉड्स कॉम्पिटेटर हमें बनना है। गॉड का कॉम्पिटेटर का अर्थ प्रतिस्पर्धी, भगवान श्री कृष्ण के हम प्रतिस्पर्धी बनना चाहते हैं, स्पर्धा करना चाहते हैं उनसे। और भगवान बनना चाहते, इसलिए तो यहां आए। तो हमारा मगज तो गंदा है, हमारी चेतना गंदी है। क्या गंदगी है कि हम अकेला, तू भगवान क्यों, मैं भी भगवान, ये गंदगी है। और भगवान का द्वेष किया, ये गंदगी है। सब चीज से चल भगवान चला लेते हैं, लेकिन द्वेष, निंदा, चुगली, ये हम भगवान के मत्सरता भगवान के धाम में नहीं ले जा सकते। मत्सरता, निरमत्सरो परो, मत्सरता यहां छोड़नी होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद वहां तक चलेगा, लेकिन मत्सरता तो यहां। अच्छा लोग कौन से, किसको आप अच्छा लोग कहोगे? अच्छा लोग की परिभाषा में कहता हूं, इसमें कितने लोग आता है, आते हैं। परिभाषा अच्छे लोग की ये है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा स्वरूपेण धावतो बही। ये अच्छे लोगों की परिभाषा है। यस्यास्ति बुद्धि, यस्यास्ति भक्ति, यस्य ईश कृष्ण की भक्ति, भगवती शुद्ध भक्ति, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, अकिंचन भगवान, अकिंचन भगवान की अकिंचन भक्त भक्ति करता है, उनमें ही सारे देवी देवताओं के, सब 33 करोड़ देवी देवताओं के अच्छे गुण उसमें मौजूद होते हैं, सब देवी देवताओं के। और यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणै समासते सुर, उनमें सारे देवी देवताओं के गुण हैं। लेकिन हराव भक्तस्य, हराव अभक्त, जो भक्त कृष्ण का भक्त नहीं है, देवी देवताओं का भक्त की बात नहीं है, वो गंदे हैं, बिल्कुल गंदे हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 4 बार कहा है देवी देवताओं के भक्त, क्योंकि उनकी इच्छा गंदी होती है, उनकी उनकी इच्छाओं भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाओं में भी गंदी गंदी इच्छाएं, और देवी देवता भी बहुत कृपालु होते हैं। तो तथास्तु बेटे, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के भक्त है, सबसे बड़ा राक्षस, गंदी गंदा है हिरण्यकशिपु। रावण शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त, ब्राह्मण था, फिर भी गंदा है। देवी देवताओं के भक्त भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हराव भक्तस्य, यहां कहा गया है श्लोक में, हराव अभक्त, कृष्ण का जो भक्त नहीं है, देवी देवता भक्त है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, कितना भी अच्छे अच्छे गुण क्यों ना हो, कंबल बांटता हो सर्दियों में, खाना बांटता हो, क्यों कितने भी उनमें अच्छे गुण क्यों ना हो, लेकिन स्वरूपेण धावतो बही, वो बाहर की सपाटी में, बाहर ही ये बाह्य अच्छा है, अंदर से अच्छा नहीं है। तो अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है, यहां विराम करते हैं। अच्छा है कौन? तो अच्छे लोगों को बुरा इसलिए होता है, चाहे वो अच्छा दिखाई दे, लेकिन गत जन्मों में उनने बहुत गंदा काम किया, तो वो गंदा कामों का फल अभी उनको मिल रहा है, इसलिए बुरा दिखाई दे रहा है। भक्त को लगता है कि उनको दुख है, लेकिन भक्त को कभी दुख नहीं हो सकता। लगता है मीरा को दुख है, लेकिन मीरा कहती है मुझे कोई दुख नहीं है, करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी, कोई दिन तकिया, कोई दिन भौंय पे सोना जी, भौंय में सो रही तो दुख नहीं, उनके लिए कुछ दुख नहीं। भक्त ऐसी ऐसे स्तर पर आ जाता है भक्त कि उनको आनंद, सुख के लिए, सुख के बिना और कुछ दिखाई नहीं दे, ये जीने की कला है। हर हालत में हम आनंदित रह सकते हैं, ये आज का विषय है जीने की कला। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए एक वैष्णव शुद्ध भक्त गुरु की जरूरत है। गुरु, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आपको अगर कारपेंटरी, लकड़ी का मिस्त्री बनना है तो क्या करना होगा, लकड़ी के मिस्त्री के पास काम, उनके नीचे काम करना होगा और सब कुछ सीखना होगा, रंदा लगाना या कैसे जोड़ना, खिली हिट द नेल, हाउ टू हिट द नेल। तो आपको डॉक्टर एमबीबीएस बन गए, लेकिन एमबीबीएस बनने के बाद तुरंत आप डॉक्टर नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर के नीचे काम करना होगा, इंटर्नशिप बोलते हैं उनसे, कोई हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में आपको कुछ सीखना है तो आपको कोई टीचर चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में चौथे अध्याय में 34 श्लोक का, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। तत्वदर्शिन जिसने तत्व श्री कृष्ण का दर्शन किया है वो ज्ञानी। तद विद्धि वो विद्धि, भक्ति की विधि, जीने की कला की विधि, तद विद्धि प्रणिपातिन वो सीखनी है तो सबसे पहले गुरु को प्रणिपात, पहले न्योछावर करो, अपनी जात को न्योछावर करो, नहीं कि अपने घर को, वो उनमें उनके साथ आपको न्योछावर करना होगा, सब साथ। ऐसा नहीं कि मैं आ गया गुरुदेव और सब कुछ पीछे छोड़ के। तद विधि प्रणिपात, पहले प्रणिपात न्योछावर, परिप्रश्ने न बाद में उनको प्रश्न करो, सेवया उनकी सेवा करो, गुरु की सेवा करो। ये तीन शिष्य की लायकाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा रोग मिटा दो, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, मुझे पति मिल जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे पुत्री मिल जाए, नहीं, ये गुरु का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस आप कोई देवी देवताओं के साथ कर सकते, क्योंकि देवी देवताओं आपको दे सकते हैं ये सब, क्योंकि वो इंचार्ज, भगवान ने, कृष्ण ने देवी देवताओं को उनका इंचार्ज बनाया है, देवी देवताओं को वो आपको दे सकते हैं। गुरु का ये बिजनेस नहीं है। गुरु का बिजनेस है आपको भगवान की पहचान कराए, भगवान के पास ले जाए, भगवान के पास जाने के लिए वो अभिधेय बताए कि जाने के लिए आपको क्या करना होगा, शिक्षा। शिक्षा देने के बिना कान में मंत्र फुकवा लिया, कान फुकवा लिया, मेरे गुरु है, हो गया काम, नहीं, गलत है। गुरु का अर्थ है शिक्षा, वो सिखाएगा आपको। प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं उनकी वाणी से, उनके तात्पर्य से प्रभुपाद जी सिखाते हैं। तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी न। अभी तो शिष्य को कोई गुरु कहे कि ये करो बेटा तो कुछ और करेगा, ये करो तो कुछ मनमानी करेंगे। मैं सच्चा हूं, मेरी तरह गुरु बोले तो मेरा गुरु, मैं गुरु बना सकता हूं, मैं जैसे चाहता हूं वैसे वो मुझे कहें करना, मुझे क्या करना चाहिए मैं जैसे चाहता हूं वैसे कहें तो उनको गुरु बनाऊं, ये लायकात नहीं है। गुरु कहे उनके गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आख्य, गुरु मुख का, गुरु के मुख कमल में से वाक्य जो भी निकला उनको चित्त से, चित्त में करी आख्य, आरना नहीं आशा, मुझे और कोई आशा नहीं है। तो ये गुरु को क्यों, तस्मात गुरुम प्रपद्येत, श्रीमद् भागवतम 11:321, तस्मात, इसीलिए, क्यों, तस्मात का अर्थ है हमें ये भौतिक संसार से छूटना है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, इसीलिए तस्मात गुरुम प्रपद्येत श्रेयो जिज्ञासु उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मनी उपश्रमाश्रय तस्मात गुरुम प्रपद्येय। इसलिए प्रपद्य, अगेन सेम वर्ड, एक ही शब्द, प्रपद्येत तस्मात, इसीलिए गुरु प्रपन्न का अर्थ है समर्पित, गुरु को समर्पण करो पहले, प्रपन्न। तद विद्धि प्रणिपातेन, यहां तस्मात गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्येत न्योच, पहले आप शरणागति स्वीकारो गुरु की, शिष्यास्ते हम त्याहिमाम त्वाम प्रपन्नम, यह शब्द हर जगह प्रपन्नम भगवान श्री कृष्ण भी कहते अर्जुन को, नहीं अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको प्रपन्न हूं और मुझे चाहे वो कर लो, आप ठुकराओ मुझे, पिटाई करो मुझे, मुझे कुछ भी करो, लेकिन गुरु अगर कुछ थोड़ा सा कटु वचन बोलेंगे आपके लिए तुरंत ये गुरु नहीं है, मुझे गुरु नहीं चाहिए, गुरु आप, गुरु इज राइट, हम राइट नहीं, शिष्य राइट नहीं, गुरु इज राइट, प्रभुपाद इज ऑलवेज राइट। प्रपन्न शब्द बहुत महत्वपूर्ण, हर श्लोक में प्रपन्न शब्द आता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जिज्ञासु इंक्विजिटिवनेस, ऐसा नहीं कि बुद्धू बन के जाए, जिज्ञासा करो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं यहां क्यों आया, मैं कौन हूं, तो जिज्ञासा करो, अहम ब्रह्मासी ब्रह्मास्मि, जिज्ञासा, नाउ लेट्स इंक्वायर हु एम आई, अथा तो नाउ, अभी जब हम ये मनुष्य जन्म में आए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये जिज्ञासु, जिज्ञासु का अर्थ है ब्रह्म की जिज्ञासा, ये नहीं ब्रह्म जिज्ञासु की वेर इज फूड, क्या चिरिप 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 चिड़िया भी है सुबह, कहाँ है फूड, कहाँ है चुगने का, कहाँ है खाने का, कहाँ है, ये जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा, कृष्ण की जिज्ञासा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, श्रेय जिज्ञासु उत्तमम, शब्द परे च निष्णातम, और गुरु, गुरु की परिभाषा इसमें कही के शब्द परे, गुरु ये शास्त्र, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, गुरु ये शास्त्रों का निचोड़ समझता, उसको ज्ञान होना चाहिए, ऐसा उनके अंदर शक्ति होनी चाहिए कि लोगों को समझाएं और वो तुरंत लोग समझ जाएं। इसको बोलते हैं, क्या लिखा है इधर, स्क्रिप्चर्स में डेलिब्रेशन एंड इज एबल टू कन्विंस अदर्स, कन्विंस अदर्स, शास्त्रों में निष्णात होना चाहिए, शास्त्रों का अर्क निचोड़, तर्क, शास्त्रों का दर्शन उनको पक्का पता होना चाहिए, और बाद में दूसरों को कन्विंस अदर, दूसरों को समझाए कि ये सत्य है ये असत्य है, शास्त्र युक्त समझाए, कन्विंस, एबल टू कन्विंस अदर्स ऑफ दिस कंक्लूजन ऑफ द वेदस, कंक्लूजन शास्त्रों का जो कंक्लूजन है, शास्त्रों का निचोड़ है, वो दूसरों को समझा सके। Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Personality of Godhead, leaving aside all material consideration, should be understood to be a bona fide spiritual master. ये bona fide मतलब कि परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तिम, गुरु परंपरा में होना चाहिए, इसको bona fide बोलते हैं, bona fide मतलब प्रमाणित, प्रामाणित गुरु, सबसे प्रामाणित गुरु होना चाहिए, गुरु परमा एवं परंपरा, श्री कृष्ण से शुरू हुई जो परंपरा है उसमें गुरु होना चाहिए, वैष्णव गुरु होना चाहिए। तो आचार्यवान पुरुषा वेदा, आचार्यवान जो आचार्य जिनने गुरु बनाए वही वेद को जान सकता है, आचार्यवान पुरुषा वेदा, तद विज्ञार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उपाश्रयम, समित प्राणी सोत्रियम, समित, समित मतलब कि गुरु के पास जाओ तो उनके लिए कुछ लेके जाओ, उनकी सेवा के लिए, समित लकड़ी हवन करने के लिए कुछ, कुछ भी, समित पाणी सोत्रियम, और गुरु सोत्रियम होना चाहिए, उनके गुरु से सुना, सुनना चाहिए उनको, उनके गुरु से ज्ञान लिया हुआ चाहिए, सोत्रियम, और ब्रह्म में निष्ठ होना चाहिए, श्री कृष्ण में निष्ठ होना चाहिए गुरु, ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ करता रहे और जब उपदेश दे तब नहीं, उनका सारा जीवन, उनकी दिनचर्या सब कुछ देखना चाहिए। 24 घंटा कृष्ण में रथ होना चाहिए गुरु, कृष्ण में कृष्णमय होना चाहिए गुरु। 24 घंटा उनका जीवन, सुबह से उठे रात निंद्रा तक कृष्णमय जीवन। समित पानी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कृष्ण में निष्ठ। तो ये है मुंडक उपनिषद का है 1-12। और गुरु कौन बन सकता है, गुरु कौन है, इनकी परिभाषा हम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सीसी मध्य 8-128, क्या कहते हैं कि कौन गुरु बन सकता है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। किबा विप्र, वो विप्र है, ब्राह्मण है। किबा विप्र किबा न्यासी, सन्यासी है। शूद्र कहने नहीं, या तो शूद्र है, नीच जाति है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गुरु बन सकता है। किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण सन्यासी ही गुरु बन सकते, ऐसा नहीं। किबा विप्र किबा शूद्र, शूद्र भी क्यों ना हो, गृहस्थ क्यों ना हो, ज्यादातर तो गृहस्थ ही गुरु है। हमारे शास्त्रों में देखोगे ब्रह्मा शिव जनको वगैरह वगैरह कहीं। तो किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने न आए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण का विज्ञान जानता है, जो कृष्ण को सही जानता है, कृष्ण का तत्व जानता है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता। कृष्ण का तत्व जानना का मतलब कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, सबका स्रोत भगवान है और उसमें से सब कुछ आता है, ये कृष्ण तत्ववेत्ता। मैंने समझा है कृष्ण के बारे में, कृष्ण तत्व है, सही गुरु होय वो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में कहा है सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। सट कर्म, छह कर्मों में निपुण विप्र भी क्यों ना हो, ब्राह्मण भी क्यों ना हो, सट कर्मों में पठन पाठन यजन याजन दान पतिग्रिया वगैरह वगैरह, सट कर्मों में निपुण विप्र भी गुरु नहीं बन सकता। अगर वो अवैष्णव है, वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता। अवैष्णवो सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात्, अवैष्णव गुरु नहीं बन सकता। वैष्णवो स्वपचो गुरु, अगर वैष्णव चाहे वो चांडाल भी क्यों ना हो, गृहस्थ या कोई किसी की बात नहीं, चंडाल, चंडाल की बात कर रहे, चंडाल भी क्यों ना हो, लेकिन वो वैष्णव है, कृष्ण का विज्ञान जानता है, तो वो गुरु बन सकते। सूरदास के गुरु कौन थे, शिक्षा गुरु कौन थे, चिंतामणि वेश्या, वहां से उनकी आंख प्रकाशित हुई। तो ऐसा नहीं कि गुरु मतलब लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, बड़े केश मैटेड हेयर और सन्यास का भगवा ऑरेंज क्लोथ्स एंड, ये परिभाषा नहीं है। कोई पूजा करता है हर रोज देवी देवताओं की, ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा ये है, क्या परिभाषा है, कि यही कृष्ण तत्ववेत्ता अर्थात अवैष्णवो गुरु न स्यात्, वैष्णव स्वपचो गुरु, वैष्णव होना चाहिए। अवैष्णव मुखद गिराद पुताम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापय। अवैष्णव से कथामृत पान नहीं करना चाहिए, कृष्ण की कथामृत का पान नहीं करना चाहिए। क्यों, क्यों कि वो लगती है कथा लेकिन कथा नहीं है, एक थोड़ा सा इधर उधर बोल दे और सब टीवी में जो आते हैं सब खिचड़ा करते हैं, आप मानोगे नहीं लेकिन सब करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण यहाँ आते हैं, वो मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं और वो कृष्ण, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं या तो आध्यात्मिक जगत में होते हैं, वही कृष्ण है। यहाँ मनुष्य जैसी लीला इसलिए करते हैं कि मनुष्य को वो आकर्षित करे, ऐसी सुंदर लीलाएं जन्म लीला वगैरह करके, जन्म वाले बालक बाल कृष्ण और 16 साल के कृष्ण में कोई और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लोग वैष्णव गुरु भी ये पढ़ाते हैं कि यहाँ जो कृष्ण है मनुष्य शरीर धारण करता है, नहीं, उनका देह हमें दिव्य है, सच्चिदानंद देह। तो ये वैष्णव स्वपचो गुरु, तो ये गुरु जो है, ये कृष्ण क्या कहते हैं गुरु के बारे में? कृष्ण कहते हैं आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत कर हचित न मर्त्य बुद्धि असुयत सर्वदेव मयो गुरु। कृष्ण कहते हैं कि आचार्य माम विज्ञानियम, मैं और आचार्य, आचार्य को मेरा स्वरूप समझो, मैं हूं आचार्य। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः, गुरु ये साक्षात हरि है, कृष्ण कहते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। ये कृष्ण कह रहे हैं एक्चुअली, गुरु की कृपा से साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परिभाषाएं कई कर सकते हैं, लेकिन ये गुरु, ऐसा गुरु आपको भगवान श्री कृष्ण के पास ले जा सकता है। अगर गुरु मध्यम अधिकारी भी क्यों ना हो, वो गुरु बन सकता है, क्यों कि आगे वाली परंपरा बलवान है और वहां वो उनका लिंक है। इसीलिए ऐसा गुरु जो वैष्णव है वो आपका कल्याण करके ही रहेगा, ये गुरु एवं परंपरा प्राप्ति। तो ये गुरु हमें खोजना है और खोज के प्रणिपात करना है, क्यों कि हमें मनुष्य जीवन का एकमात्र परम चरम लक्ष्य है वो हमें हासिल करना है। तो ये गुरु से सीखना होगा, कारपेंटर, डॉक्टर। तो प्रभुपाद जी ये हमारे शिक्षा गुरु हैं और ऐसे गुरु के पास जाके प्रणिपात करना है। तो ये बहुत बड़ा समाधान है कि आप ये मनुष्य जीवन आपको मिला है वो निष्फल न जाए। इसीलिए हमें ये विज्ञान तद्विद्धि हमें जानना होगा, और जानने के लिए क्योंकि अलग अलग गुरु आपको अलग अलग जगह ले जाएगा। देवता देवी देवताओं का फॉलोअर है तो वो देवी देवताओं के पास ले जाएगा, ब्रह्म ज्योति का है तो ब्रह्म लीन कराएगा अकेलेपन में, और अगर वो निराकारी हैं तो आपको भी निराकार बनाएगा, भगवान को भी निराकार बताएगा और आपको ब्रह्म ज्योति में इधर उधर भटकाएगा। गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु के बारे में, सुंदर कहते हैं, ये कहते हैं कि गुरु इज ए कैप्टन, गुरु कैप्टन है आपकी सिप। नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, नृदेह ये नर का देह, मनुष्य का देह बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, कहीं कहीं चक्कर काट काट के 84 लाख योनियों के अनगिनत चक्कर काट के हम ये दिल्ली में हमारा मनुष्य जन्म मिला। तो ये दुर्लभ अति दुर्लभ मनुष्य नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, बहुत दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म हमें मिला। तो भगवान कहते हैं कि उसको निष्फल न जाए, इसलिए गंभीरता से लो, क्या कहते हैं, सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। ये मनुष्य शरीर ये जहाज है, ये सागर से तैरने के लिए बड़ा जहाज है मनुष्य शरीर। पशु पंछी योनियों में आपका काम नहीं हो सकता, मनुष्य योनि ही जहाज है। प्लवम सुकल्पम और गुरु कर्णधार, गुरु क्या है, कर्णधार, कैप्टन, ड्राइवर, वो जहाज को चलाने वाला। तो ये आपका जहाज अगर चलाने वाला कुछ और दिशा में ले जाए, जाना है श्री कृष्ण के पास, और ले जाएगा नरक में, स्वर्ग में, ब्रह्म ज्योति में निराकार में देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं के पास भौतिक इच्छाओं की पुष्टि के लिए वहां ले जाएगा। तो ऐसा गुरु आपको भटकाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। वैष्णव स्वपचो गुरु, यही यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय, ये गुरु है। एवं परंपरा प्राप्तिम, इसमें परंपरा में जो गुरु आया है वो साक्षात हरित्वेन, वो गुरु साक्षात हरि है, और वो गुरु का प्रसाद से हमें भगवत प्रसाद मिलता है। तो ध्यान से सुनो, ये आधा घंटा ये आपके जीवन की पराकाष्ठा, ये तक ये आधा घंटा आपके आपने जो अभी तक जिया उनका ये फल है। ये आधा घंटा ध्यान से सुनो, अगर सुन के आप जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो शून्य हो जाएगा। तो हम जीने की कला, ये नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूले नभस्वता ईडिता पुमान भवाद्यम न तरेत स आत्महना। जो और प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम और मया अनुकूले नभस्वता ईडितम, ये जहाज चलता है किससे? धक्का कुछ लगाना, मशीन धक्का लगाता है जहाज को, तब जहाज चलता है। तो पहले के जमाने में ये वायु से जहाज चलता था। तो अनुकूले नभस्व, नभस्वता वायु, तो वायु ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं, ये शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं ये हैं नभस्वता, ये वायु है चलाने वाला। तो ये तीनों चीज हमें चाहिए, ये जीने की कला है, ये तीनों चीज हमें चाहिए। एक चीज कम होगी तो आपका जहाज जहां डेस्टिनेशन जहां जाना है जहां ले जाना है वहां नहीं जाएगा, चाहे वो घूमता रहेगा, या तो गुरु कहीं दूसरी दिशा में ले जाएगा, या तो जहाज ही अच्छा नहीं होगा, पशु पंछी योनि होगी। तो ये तीनों इंटैक्ट चाहिए। क्या तीन चीज चाहिए? एक तो मनुष्य का शरीर चाहिए जहाज, दूसरा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं चाहिए भगवत गीता और भागवत वगैरह शिक्षाएं, जिसको वायु कहेंगे, और तीसरा कैप्टन। कैप्टन नहीं होगा तो कैप्टन कौन है? गुरु। गुरु कौन है? वैष्णव परंपरा में वो गुरु है, ये गुरु है हमारे ओरिजिनल व्यास देव गुरु है, ओरिजिनल गुरु, व्यास पीठ बोलते हैं इसको। यहां बैठ के व्यास देव के ही शब्द का उच्चारण किया जाता है, मनमानी नहीं, सब मनमानी करते हैं। हम चैलेंज देके बोलते हैं, क्यों? कि श्री कृष्ण का तत्व ही पता नहीं उन लोगों को। वैष्णव बड़े बड़े वृंदावन से भी निकल के प्रचार करते हैं, लोग कहते हैं ये जब कृष्ण इधर आते हैं तो मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, वहां कुछ और होता है, इसका मतलब ये नहीं। तो फिर से ध्यान दो, तीनों चीज आपको चाहिए, मनुष्य शरीर, गुरु कर्ण धार, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं, वायु अनुकूल वायु। ये तीन हो तो आपका जहाज किनारे पे लगेगा, आपका बेड़ा जहां पार होना है वो पार हो जाएगा, नहीं तो ये जहाज आपका इधर उधर भटक, ड्राइवर नहीं होगा तो उधर उधर कहीं और भटकता रहेगा। अगर वायु नहीं है, कृष्ण की इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो जहाज वहां ही वहां खड़ा रहेगा, कैप्टन क्या करेगा, जहाज क्या करेगा? और वायु है और कैप्टन है, जहाज नहीं है, मनुष्य योनि नहीं है, तो क्या करोगे? तीनों चाहिए तो आपका कल्याण हो सकता है। पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्महना, ये तीन चीजें मिलने पर भी अगर कोई अपना जहाज पार नहीं लगाता तो वो आत्महत्यारा है। मनुष्य शरीर मिला लेकिन गुरु ऐसा वैष्णव न मिला, और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपने गुरु से पढ़ी नहीं, एज इट इज यथावत यथारूप, तो जहाज नहीं, आपका बेड़ा पार नहीं होगा। तो तीनों चीजें चाहिए हमें। आइए आज यही आज के जीने की कला ये है कि वैष्णव गुरु को ढूंढो, ये जीने की कला है। और भगवान श्री कृष्ण की ही शिक्षाएं भागवत यथारूप, भागवत गीता यथारूप, ये प्रभुपाद जी की पढ़ो शिक्षाएं, तो ये जीने की कला है, जीने की कला। तो जीने के लिए हमें चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, क्या करें, तो ये चाहिए, यस। लेकिन ये सब कुछ नहीं समझना चाहिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, भागवत की शुरुआत होती है यहाँ, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते, धर्मस्य एकांतस्य काम लाभायते स्मृतः। जो धर्म से हम उपार्जन करते हैं, हमारी फैक्ट्री से, दुकान से, जॉब नौकरी से जो उपार्जन करते हैं, वो उपार्जन का एकमात्र अर्थ है। वो क्या अर्थ है कि इनसे हमारा अपवर्ग भगवत धाम जाना, भगवान की, भगवान का प्रेम, श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में जागृत करने के लिए ये धन का उपयोग करना है। लेकिन ये हम धन का उपयोग क्या करते हैं, कर्मी बन के, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन का उपयोग। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान हमें जरूर चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना कैसी होनी चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल, सरल, बिल्कुल सरल और सादा। सिंपल को क्या बोलोगे, सादा, बिल्कुल सही हिंदी है मेरी, सादा जीवन, सिंपल, सरल, सादा जीवन। चाहे आप करोड़पति भी क्यों ना हो, चाहे आप बिल्कुल कुछ खाने पीने का भी क्यों ना हो, फिर भी आप बहुत सुंदर जीवन जी सकते हो। हमारे सठ गोस्वामी हमारा उदाहरण है, उनके पास करोड़ों खरबजों में संपत्ति थी, एक मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, करोड़ों खरबजों संपत्ति छोड़ छाड़ के बिल्कुल वृंदावन में एक कंथा और कोपिन, कोपिन का अर्थ है लंगोटी और कंथा का अर्थ है टूटी फूटी गुदड़ी, दो बस। तो इससे तो आप सबकी हालत बहुत अच्छी है, तो आप सब बहुत अच्छा जी सकते हो अगर जीने की कला। बीच में एक कोपिन और कंठा और करोड़ रुपयों के बीच में क्या आता है, हमारा लोभ, काम, लस्टी डिजायर्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, लोभ, स्पेशली लोभ, इतना है, इतना चाहूंगा, इतना शत्रु मारा, इतना धन इकट्ठा किया, कल इतना धन इकट्ठा होगा, ये लोभ है। तो जीने की कला का अर्थ ये है कि हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल सरल जीना है हमें, नो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यू शुड कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि हम, हमारा जैसा शरीर वैसा हमारा कोट कट करते हैं, कोट का माप। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर बहुत बड़ा है और कोट छोटा है, ऐसा नहीं। हमारा जो मींस है, जितना भी हमें मिलता है, 8 घंटे में आपको जो भी भगवान चाहे वो देते हैं, उतने में संतुष्टि, संतोष। ये संतोष 3 चीजों में संतोष करना चाहिए, स्त्री में संतोष करना चाहिए, अपनी पत्नी में, और धन में संतोष करना चाहिए, खानपान में संतोष करना चाहिए, नहीं कि खाते रहे। संतोष त्रिसु कर्तव्यम, अन संतोष 3 में संतोष नहीं करना चाहिए। एक तो भक्ति में, कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, बस संतोष, मैं, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है, नहीं, भक्ति में संतोष नहीं करना चाहिए। दान में संतोष नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत दान किए, दान करते रहो जितने आपके बस में है। संतोष 1 रुपया हो, उसके ऊपर 1,25,000 रुपये का संतोष रखो, तो आपके पास ऑटोमेटिक 1,25,000 रुपया आ गए, खाली मेंटल एडजस्टमेंट। आपके स्वभाव को, मन को, बुद्धि को एडजस्ट करनी है कि मेरे पास एक रुपया है लेकिन वो 1,25,000 है, तो आप आप लखपति करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। ये जीने की कला है। अगर आपको ये सब नहीं होगा तो भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ लिया गया है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको आपका जीवन बैलेंस करना होगा, बैलेंस आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक जीवन को ऐसे बैलेंस करो कि आप आध्यात्मिक में हर रोज आगे बढ़ो। अगर भौतिक जीवन में बैलेंस नहीं होगा तो नहीं चलेगा। 16 घंटा मुझे और चाहिए, 16 घंटा काम, ज्यादा काम करने से, ज्यादा दुकान खोलने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं, 1-2% ज्यादा आपको कमाई मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं होता। 8 घंटा भगवान ने तय किया है, बाकी का भगवान के लिए समय, श्री कृष्ण के लिए। भगवान का मतलब श्री कृष्ण के लिए। भगवान को देना होगा, आपके नसीब आपके भाग्य में होगा तो 8 घंटे में आपको मिल जाएगा जितना, और नहीं आपके भाग्य में है तो 8 घंटा कड़ी मजूरी गधा करता है, कड़ी मजूरी करता है, लेकिन उनको अंत में वो डिंडलिंग कैरेट होता है, वो कैरेट भी गधा, एक गधा के आगे धोबी कैरेट लटकाता है 1 फुट आगे, और गधा इससे चलता रहता है कि मुझे 1 स्टेप आगे लूंगा, मैं 1 कदम आगे लूंगा तो मुझको ये गाजर खाने को मिल जाएगा, तो वो चलता रहता है सारा दिन, 12 घंटा धोबी उनको चलाता रहता है, और दिन के अंत में वो धोबी वो गाजर को लेके अपने खिस्से में डाल देता है, और दूसरे दिन वही गाजर वो लटका देता है, गाजर भी नहीं मिलता है गधे को, ये गधा है, और ये ढेलता रहता है गाजर, ये गाजर देखता है आंख फाड़ के, मुझे मिल जाएगा, लेकिन गाजर मिलता नहीं, अंत में वो खिस्से में रख लेता है और दूसरे दिन वही गाजर लटका देता है। तो मिलना है मिल जाएगा आपको, ऐसा गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन को बैलेंस, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दूसरी चीज है कि घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, पति पत्नी में राग होना चाहिए, वहां लक्ष्मी जल्दी आती है। पत्नी घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी बोलते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, शास्त्र युक्त बात कर रहा हूं, हंसने की बिल्कुल बात नहीं। घर की लक्ष्मी गृह लक्ष्मी है, और जहां गृह लक्ष्मी के साथ पति पत्नी का मेल जोल है वहां लक्ष्मी खींचती हुई आ जाएगी, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। तो कला, पति पत्नी में कला, भक्ति नहीं होगी, आपकी भक्ति बेकार हो जाएगी। वो उनका टांग खींचेगा और वो उनके टांग खींचेगी, और घर में प्यार प्रेम, हम दूसरों को सारी दुनिया को प्रेम कर लेंगे, लेकिन घर में पति पत्नी सास वगैरह वगैरह, घर में ही चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। घर में इतना सुंदर सहयोग सहकार प्रेम विश्वास होना चाहिए सबको, सब में, घर के सदस्यों में, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो उनके ऊपर पहले काम करो, बाद में भक्ति आपकी सिद्ध होगी, ये बहुत, नहीं तो भी ये घर में से निकल जाओ। क्यों? हमें मनुष्य जन्म गवाना नहीं है, लेकिन पहले प्रयत्न करो, ऐसा नहीं कि हमने कहा इसलिए निकल जाए, पहले प्रयत्न करो, बहुत प्रयत्न करो कि घर में बहुत अच्छा वातावरण हो, प्रेम का साम्राज्य हो, भक्ति में बहुत मौज आएगी। ये बहुत जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है, जीने की कला है। तो हमारे जीवन के सबसे बड़े पहलू है जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये मिटाना है। और हमें ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश ये सब हमें सता रहे, तो उसमें निकलने के लिए हमें कोई, मतलब कि हम भवसागर में गिरे हैं, कल क्वेश्चन किया था, निकलने की दिशा दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको चाहिए कि कोई हेलीकॉप्टर लेके सागर के बीच में आप डूब रहे हो, जहाज डूब रहा है आपका, वहां आए हेलीकॉप्टर लेके और आपको रस्सी गिराए और आप रस्सी को पकड़ लो, तो हेलीकॉप्टर वाला जो है आपको सागर में से खींच लेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर लेके आने वाला वो गुरु है, और जो रस्सी गिरी है वो रस्सी है गुरु की इंस्ट्रक्शन, और वो इंस्ट्रक्शन गुरु की शिक्षाएं, वो शिक्षाएं को हम पकड़ेंगे बराबर टाइट, तो गुरु आपको खींच सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 9th कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम। जो जिसका चित्त मेरे में प्रविष्ट है, जिसका चित्त कृष्ण में प्रविष्ट है, आवेशित है, जिनका चित्त कृष्ण में रहता है, तो कृष्ण उनको अंत में आते हैं, उनके जीवन के अंत में आते हैं और गरुड़ पर चढ़ के आते हैं और उनको तुरंत भवसागर से उबारते हैं और अपने धाम निजी धाम ले जाते हैं। ये भगवान का वचन है। भगवान भगवद गीता में श्री कृष्ण हर चार श्लोक में वचनबद्ध होते हैं, तू ये कर तू मेरे पास आएगा, तू मेरे पास आएगा, हर चार पांच श्लोक में बोलते हैं मेरे धाम आएगा, मुझको पामेगा, मुझे पामेगा, हर पांच श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य नैव योगेन माम ध्यात उपास तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम। तो भगवान वचनबद्ध है, भगवान में चित्त रखो भगवान आएंगे, भगवान कोई जड़ नहीं है, भगवान आपका चित्त उनके उनकी फ्रीक्वेंसी में मिल गया तुरंत भगवान समझेंगे इनने मुझे बुलाया, और करोड़ एक साथ में बुलाएंगे करोड़ जगह भगवान जा सकते। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सीमित है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वगैरह से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्री कृष्ण का प्रेम हमें जागृत करना होगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य करु नहीं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो ये श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में स्थापित है, अभी है लेकिन सोया हुआ है, डॉर्मेंट अवस्था में सोया हुआ प्रेम है, तो उनको जागृत करना पड़ेगा। ध्यान दो, कृष्ण साध्य नहीं है, हमारा साध्य कृष्ण नहीं है, हमारा साध्य क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करू नहीं, श्री कृष्ण का प्रेम जागृत करना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पांच सबसे बड़े साधन है, वो पांच साधन साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धाय श्री मूर्तिर सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पांच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय यही पांचेर अल्प संग। तो सकल साधन श्रेष्ठ, सब साधनों में श्रेष्ठ ये पांच अंग है, कौन से, पहला नाम कीर्तन, साधु संग, पहला साधु संग, साधुओं का संग करना होगा, और इस्कॉन के साधु चेक एंड बैलेंस, वहां चेक एंड बैलेंस है, इस्कॉन के साधु टिक मार्क वाले होते हैं, अगर टिक मार्क नहीं है इस्कॉन से बाहर तुरंत। तो इसलिए सब जगह साधु हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस्कॉन वाले साधु कैसे हैं, कैसे हैं, टिक मार्क वाले, ऑथोराइज्ड, उसमें कोई खराबी नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपको इस्कॉन में जाना होगा, पंजाबी बाग मंदिर नजदीक है, ईस्ट ऑफ कैलाश, अभी तो दिल्ली में हमारे पास सात मंदिर है, बहादुरगढ़ में सातवा, सात मंदिर है, जो कोई भी नजदीक, तो वहां साधु भगवान प्रभुपाद जी ने ये मंदिर क्यों बनाए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिर ये ये रोटरी क्लब बिल्डिंग जैसा है, जहाँ रोटेरियन आते हैं और पीते हैं, नाचते हैं, खाते हैं मीट वगैरह। तो ये मंदिर जो है ये क्या है? साधु संघ। मंदिर क्या है? एक साधु दूसरे भक्त, एक भक्त दूसरे भक्त के साथ संग करेगा, इसके लिए एक क्लब बनाई। मंदिर इस्कॉन मंदिर है, मंदिर है प्लस मच मोर। इस्कॉन का मंदिर, मंदिर है प्लस कई कई चीज और है। तो वहाँ साधु संग संडे फिस्ट लगती है, यहाँ पंजाबी बाग में मेरे ख्याल से सैटरडे लगती है। तो ये साधु संघ के लिए ये संदे प्रीति भोज का कार्यक्रम होता है। तो ये साधु संघ है, साधु संघ MP3 प्लेयर छोटा सा आता है, आईपॉड जैसा। आईपॉड एक ब्रांड है, MP3 प्लेयर एक नाम है, कोई भी MP3 प्लेयर ले सकते हो। और कान में प्रभुपाद जी के लेक्चर आप सुनो, खाना पकाते हुए आप लेक्चर सुन सकते हो, स्नान करते हुए लेक्चर सुन सकते हो, खाते हुए, जाते हुए, गाड़ी में, जहाँ भी, ये साधु संग, प्रभुपाद जी का साधु संग आप प्राप्त कर सकते हो। ध्यान दो, ये बहुत बड़ी चीज है। सुनो, प्रभुपाद जी को सुनो, ये प्रभुपाद जी का संग है। संग का अर्थ सुनना है। तो साधु संग, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करनी चाहिए, 16 माला। तो 5 स्टेप यहाँ हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट, जिसमें सब शास्त्रों का अर्क है, ये 5 स्टेप में वो है। हम है आत्मा, आप सब कौन हो? पीछे दुरात्मा है, आप सब कौन हो? पीछे भी नहीं बोले। तो आप सब आत्मा है और श्री कृष्ण भगवान के अंश है। ममेव अंशो जीवलोके, हम आत्मा है, श्री कृष्ण के अंश है। उदाहरण, ये हाथ ये शरीर का अंश है, तो हाथ अपना हित चाहता है तो हाथ को दो चीजें करनी ही पड़ेगी। एक है हाथ को शरीर के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और हाथ को शरीर की सेवा, लड्डू की सेवा शरीर को करनी पड़ेगी। हाथ कहे मैं, मेरे पास लड्डू है, शरीर से अलग रहूंगा और लड्डू का उपभोग करूंगा, हृष्ट पृष्ट रहूंगा, नहीं हो सकता। हो सकता है? तो इसी तरह आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, इसीलिए आत्मा को चाहिए अपने हित के लिए कि श्री कृष्ण की सेवा करें। ध्यान दो, आत्मा को चाहिए कि श्री कृष्ण की ही सेवा करें। ये हाथ दूसरे शरीर की सेवा करे नहीं चलेगा, ये हाथ को अपने अंशी शरीर की सेवा करनी पड़ेगी। तो आत्मा का अंश है, अंशी है श्री कृष्ण, तो आत्मा को चाहे श्री कृष्ण की सेवा करे। तो सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? सेवन मुखे है जीव आदो। कोई कर सेवा करता है, कोई दान सेवा करता है, कोई मन सेवा, कोई कई सेवा करता है। तो सबसे सरल सेवा कौन सी है? मुंह से और जीवा से भगवान के नाम का रटन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, मुख और जीभ से। सेवन मुखे है जीवा दो, मुख से और जीवा से, सरल है, आप कहाँ भी कर सकते हो। और कोई नियम नहीं है ये नाम लेने में, मुंह और जीवा से नाम लेने में कोई नियम नहीं। आप अस्वच्छ हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में हो, भगवान का नाम का, ये हरे कृष्ण मंत्र का रटन कर सकते हो। इतना सरल, इतना सिंपल। तो हम आत्मा है, श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए उनकी, श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। और सबसे ऊंची और सबसे सरल और सबसे ऊंची सेवा क्या है? मुख से और जीवा से बोलना है हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला। हर रोज कितनी माला करना है? 16 माला। ऐसे माला करते हैं, ये मेढ़ है मुख्य मंत्र, मुख्य जो मेढ़, और उसके बाद शुरू करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 16 माला करनी है। तो ये 16 माला ये क्या है? उनकी सेवा। तो आप श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो आपको क्या फल मिलेगा? फल ये है कि जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। माँ नवजात बच्चे की सेवा करती है तो बच्चा माँ से क्या करता है? प्रेम करता है। मालिक कुत्ते की सेवा करता है तो कुत्ता किससे प्रेम करता है? इसी तरह मालिक श्री कृष्ण, सबका मालिक श्री कृष्ण, उनकी सेवा करोगे मुंह से और जीवा से, उनके नाम से, नाम और कृष्ण एक है, तो एक कृष्ण की सेवा करोगे तो आपको क्या फल मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? किसका प्रेम? हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। मैंने पहले कहा था कृष्ण हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम तभी मिल सकता है जब हम उनकी सेवा करें। और उनकी सबसे सरल सेवा है मुख से और जिह्वा से उनका नाम का रटन। कर सेवा, धन सेवा, मन सेवा, दान सेवा, सब सेवा से ये सर्वोत्तम सेवा है। तो 16 माला ए डे विल मेक योर डे, विल मेक योर लाइफ। 16 माला ये आपके जीवन की जीने की कला है। ये जीवन सार्थक होगा, आपका जीवन बनेगा, आपका जीवन बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। इसलिए 16 माला जरूरी है। 16 माला कोई भी हालत में आपको चाहिए कि 16 माला करें। तो साधु संग, नाम कीर्तन, तीसरा है भागवत श्रवण। ध्यान दो, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। भागवत का श्रवण ये लोग जानते भी नहीं कि भागवत क्या चीज है। ये भागवत नहीं, ये गीता है, भगवत गीता। और भागवत ये पुराण, भागवत जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाएं, उनके अवतार की लीलाएं, ये भागवत का श्रवण भागवत स्थाने भागवत भक्तों से सुनना चाहिए, अभक्तों से नहीं, निराकारवादियों से नहीं, ब्रह्मवादियों से नहीं, देवी देवताओं वादियों से नहीं, वैष्णव से। भागवत, भागवत पढ़ोगिया भागवत स्थाने। ये भागवत ये खुद श्री कृष्ण है, भागवत कृष्ण से अलग नहीं है। इसलिए भागवत का सेवन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और वृंदावन में वास करना चाहिए। महीने में एक दिन, 4 संडे से एक संडे वृंदावन के लिए निकालना ही चाहिए। वृंदावन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये परीक्षित महाराज वृंदावन के प्रभाव से परीक्षित महाराज बने, और राधा प्रिया, और इसके पीछे माधव प्रिया, और इसके पीछे रुक्मिणी प्रिया, और कृष्ण प्रिया, ये सब प्रिया वृंदावन का प्रभाव का ये प्रज्वलंत उदाहरण। वृंदावन आओगे, वृंदावन का प्रभाव पड़ेगा, आप भक्ति भाव आपके हृदय में उनका अंकुर फूटेगा। बहुत जरूरी है। लोग दिल्ली में रहते हैं, कई लोगों ने दिल्ली में अभी 50 साल तक वृंदावन देखा नहीं है। यहीं कई लोग होंगे, कई लोग यहाँ हाथ कहेंगे तो शर्मिंदा होके नहीं करेंगे खड़ा, लेकिन जिगर है तो करेंगे। किसने अभी तक मथुरा वृंदावन नहीं देखा? हाथ खड़ा कीजिए तो, हाथ खड़ा कीजिए। वृंदावन किसने नहीं देखा? देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य। देखो 1-2 कई कई लोग अभी तक वृंदावन नहीं देखा, तो ये आपका दुर्भाग्य है। खाली 100 किलोमीटर। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, और पांचवा क्या है? श्रद्धा से श्री कृष्ण की, गौर निताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, या तो लक्ष्मी नारायण, या तो लक्ष्मी नरसिंहदेव वगैरह वगैरह, विष्णु तत्व की मूर्ति, क्या मूर्ति की सेवा, सालिंग्राम की सेवा। तो यह सेवा श्री मूर्ति, श्रद्धा से श्री मूर्ति की सेवा करना चाहिए, श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन। क्यों ये पांच अंग? क्योंकि सकल साधन से ये अंग श्रेष्ठ है। कई साधन है, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पांच अंग। कृष्णा प्रेम जन्माय, यही पांचेर अल्प संग, ये पांचों का अल्प संग हो जाए तो हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम का उदय होता है। उनके लक्षण है, अभी समय नहीं है कि अब हमारे हृदय में, शॉर्ट में, देहाती भाषा में, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम कितना है, उनका मापदंड है ये भौतिक भौतिक जगत में जितना स्नेह कम, प्रेम कम, इतना भगवान श्री कृष्ण में प्रेम ज्यादा, और जितना श्री कृष्ण भगवान में प्रेम ज्यादा उतना भौतिक जगत में प्रेम कम होता जाता है। तो ये इनका मापदंड है। शांति रवर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद वसति स्थले प्रीति तद गुणाख्याने भावांकुरे जने। जिनके हृदय में भाव, श्री कृष्ण का भाव अंकुर की शुरुआत हो, अंकुर फूटता हो, प्रेम की शुरुआत हो, तो उनके हृदय में ये भावांकुरे जने के वो नाम गाने सदा रुचि, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र उनके जीभ पर होगा। नाम गान, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपको समय बर्बाद नहीं करना है तो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का रटन करो, तो आपका समय एक क्षण भी अगर गवा दी ये मनुष्य जीवन की एक क्षण, तो बहुत बड़ा घाटा है। इसलिए क्षण नहीं गवानी है तो हरे कृष्ण महामंत्र हमेश, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरी, सततम कीर्तयंतो माम, हमें सतत भगवान का नाम ऊपर होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र। सकल साधन श्रेष्ठ, यही पांच अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय, यही पांचेर अल्प संग, इसलिए पांचों का हमें संग करना है। और उसमें भी सोलह माला, सोलह माला। तो मैं चाहता हूं कि कथा संपन्न करने के बाद थोड़े से किसी को क्वेश्चन हो, सवाल हो, शंका हो, समाधान हो, कुछ मैंने गलती की हो या तो आपकी समझ में गलती हो, तो उनका सवाल या समाधान करना चाहिए। सवाल है किसी को? सवाल ए बुद्धि की निशानी है, हमारे शास्त्र सवाल से बने। किसी को सवाल है?
And then you said that we go on circulating into it. That means if right now I have received the body of the human being, and if I do not do what I am doing, at the end of it, like Parikshit Maharaj, who became like a deer, he came as a deer, and then he again became a human being. So do we like, kya hum baar baar jo janm lete hain, jaise 84 lakh, agar main anand lena chahun, ped ka matlab hawai charo side ka, to main ped banunga.
नहीं, मनुष्य योनि ये स्वाभाविक उत्क्रांति है। 84 लाख योनि में वन आफ्टर अनदर आपका जन्म होता है, बाद में हम मनुष्य योनि में आते हैं। तो हर बार आपको 84 योनियों में भ्रमण करना होगा। तो इसीलिए, लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र की सोल माला कोई करता है तो कुछ भी आपका आपका कुछ भी कमी रह जाएगी, तो प्रभुपाद और कृष्ण दोनों वचनबद्ध हैं कि वो आपको अपने निजी धाम ले ही जाएंगे, लेकिन सोलह माला दे, बिल्कुल वचनबद्ध है। स्पेशली प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला करने वाले में कुछ कमी रह गई तो मैं वैकुंठ के भगवान के धाम के पिछले दरवाजे पे खड़ा रहूंगा और इलीगल एंट्री आपकी करवा दूंगा। तब तक उनने गारंटी दी। लेकिन 16 माला है डे, 16 माला, तो फिर आपका यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का 84 लाख का चक्कर नहीं रहता। भरत महाराज ने कुछ गलती की इसीलिए उनको हिरण बनना पड़ा, लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे। गलती कैसे नहीं करेंगे, 16 माला ए डे निश्चित रूप से निश्चय पूर्वक हर रोज 16 माला करेंगे तो आपका ध्यान होगा, कोई भी कॉन्शियसनेस होगा अंत काले जो भी होगा, लेकिन यंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सदा तद भाव भावित, भगवान आएंगे ही, चाहे हमारा ध्यान न भी हो फिर भी भगवान आएंगे। भगवान को सब कुछ ध्यान है, इसलिए गारंटी 16 माला डे तो गारंटी है, शास्त्र युक्त गारंटी, ऐसे नहीं मनमानी गारंटी। क्यों, भागवत कहता है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता कलो अस्मिन युगे जना, कलयुग में सब मनुष्य मंदा मंद है, मंद मंद नहीं, क्या कहता है सुमंद मतयो मति बुद्धि, मंद मति मतलब बुद्धू एंड सुमंद मति मतलब बुद्धू का बाप। देखो भाषा, देखो भागवत की भाषा, मंदा सुमंद मतयो मंद मति मतलब मंद बुद्धि एंड सु आगे लगाते हो तो ज्यादा मंद, बुद्धू का बाप ज्यादा मंद। तो क्यों ऐसा मंद मति मंद भाग्या, क्योंकि हम मंद भाग्या है, हमारा भाग्य मंद है। क्यों मंद भाग्य है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मेरी ये प्रायोरिटी है मेरी वो प्रायोरिटी है, मेरा हर किस्म की प्रायोरिटी प्राधान्य, प्रायोरिटी का प्रायोरिटी समझते हो आप, सबकी प्रायोरिटी, लेकिन ये 16 माला की प्रायोरिटी नहीं, तो ये बुद्धिमंद है, ये मेरा कल्याण है ना, ये मेरा कल्याण है आप जानते हो, फिर भी प्रायोरिटी नहीं देते हो तो ये बुद्धि कम है। हरे कृष्ण, 16 माला करने का कोई नियम नहीं, मर्जी चाहे करो, सुबह शाम दोपहर सुबह दो और सुबह ज्यादा कर करो, ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन दोपहर को रात को जो भी समय मिले, जब भी समय मिले 24 घंटे में आपको 16 माला करनी है। पवित्र हो अपवित्र हो वो भी ख्याल नहीं, स्नान किया ना किया वो भी ख्याल नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र नाम है और नाम करने में कोई नियम नहीं, ये कलयुग का मंत्र है। कलिय संग्रह उपनिषद में कहा है कि मंत्र करने में कोई नियम नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र करने में कोई नियम नहीं। और कोई प्रश्न,
If I have accepted somebody as a guru, प्रमाणित गुरु होना आवश्यक है मेरे लिए, अगर मैं गौरव धाम जाना चाहता हूँ, जब आपने तीन दिन बताया, तो ऐसे प्रमाणित गुरु मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा शिष्य बनने के लिए एक्सेप्टेंस कैसे होगी, गुरु मेरे को एक्सेप्ट कैसे करेंगे,
गुरु एक्सेप्ट कैसे करेंगे, जब आप अच्छे शिष्य बनोगे, एक साल तक गुरु आपको देखते हैं, 16 माला हर रोज होती है, 4 नियमों का पालन होता है, कि आप पढ़ते हो, कि आप मंदिर जाते हो, कि आप भक्तों का संग करते हो, कि आप भक्तों का द्वेष तो नहीं करते, भक्तों की चोरी नहीं करते, भक्तों के साथ प्रेम करते हो, गुरु देखेंगे आपको एक साल तक, और आप गुरु को एक साल तक देखो बाद में दीक्षा की बात, उससे पहले नहीं। इस्कॉन में दीक्षा लेने में मिनिमम 1 साल लगती है और मैक्सिमम तो 1 साल 2 साल 3 साल, मैं भी चाहता हूँ कि अभी थोड़ी साल बढ़ाई जाए, 1 साल में दीक्षा दे देते हैं हम तो ये बहुत जल्दी होता है, थोड़ा सा शिष्यों को सिखाएं और थोड़ा सा मोड़ दें तो ये करना होता है। तो शिष्य गुरु को एग्जामिन करें, 1 साल तक उनके पास रहें, साथ रहें, देखें उनको और उनका, और शिष्य गुरु भी शिष्य को एग्जामिन। तो ये ऐसा नहीं कि कान फूंक दिया गुरु बन गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं चाहिए। और किसी और को सवाल था?
कोई ऐसा तरीका भी जिससे कि वो वास्तव पता लगे, हाँ
हाँ वास्तव में पता लग सकता है। आपसे जवाब निकालते हैं कि आपने डेड बॉडी देखी है कभी? मृत देह नहीं देखा? तो मृत देह और आपके देह में फेर क्या? फेर नहीं है। तो ये वास्तविक देख सकते हो कि इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन ये आत्मा है। आत्मा के लक्षण होते हैं, आत्मा जिसमें होती है उसमें चेतना होती है, आत्मा जिसमें होती है वो जन्मती है, वो बाय प्रोडक्ट करती है, वो स्थिति करती है, अंत में मरती है। ये आत्मा जिसमें है उनका लक्षण। तो आपको भगवद गीता दूसरा अध्याय बराबर ध्यान से पढ़ो, ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय, ये भगवद गीता, तो आपको ये सब आत्मा के साक्षात्कार होगा कि आत्मा ये आत्मा कैसी है। तो ये प्रभुपाद जी ऐसी दिखाई देती है, ये शुद्ध आत्मा, शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं। लास्ट क्वेश्चन,
सच में है कि हम कभी भी कृष्ण का नहीं पहुंच सकते? जैसे कि हम, मैं अभी तक वृंदावन नहीं गई, तो मैं सच में एक बहुत ही ज्यादा तो भाग्यशाली।
यस, पहले आपके सवाल के दो तीन टुकड़े कर दूं। पहले तो वृंदावन नहीं गए वो कृष्ण को पा सकते हैं कि नहीं? पा सकते हैं। वृंदावन नहीं गए वो वृंदावन जाके ही कृष्ण को पाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वृंदावन जाओगे तो कृष्ण को पाने का रास्ता और खुल जाएगा, रास्ता आसान आसान हो जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि हाँ भाग्य, यस दुर्भाग्य तो है कि इतना नजदीक होते हुए भी अगर हम वृंदावन नहीं हुए तो हमारा दुर्भाग्य। क्यों? कि हमारे अंशी हैं कृष्ण, और कृष्ण वृंदावन छोड़ के एक पल भी जाते नहीं है, वृंदावन में ही स्थित है कृष्ण। कृष्ण को वृंदावन में आप मिल सकते हो। कृष्ण कहते हैं
कि मैं वृंदावन छोड़ के न पादम एकम अभी गच्छति, एक पद भी मैं आगे जाता नहीं वृंदावन छोड़ के। तो ऐसा वृंदावन धाम वहां जाना चाहिए। तो क्यों? कि वहां वृंदावन में हमें एक कृष्ण भावना का प्रभाव पड़ता है, हम ज्यादातर तेजी से कृष्ण प्रेम जागृत कर सकते हैं, इसीलिए वृंदावन जाना चाहिए। तो हम भाग्यशाली हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन, और हर मंथ में एक बार जाना चाहिए, जितना भी हो सके जाना चाहिए।